हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विहा की बात सुनकर निवेदिता शांत पड़ चुकी थी। वो गौर से विहा के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था दर्द के कारण। निवेदिता ने अपने इमोशंस को साइड करते हुए विहा के करीब जाते हुए उसका सर प्यार से सहलाके हुए कहा, मैं आपके लिए हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ, रोना बंद करो। इतना बोलकर निवेदिता तेज कदमों से वहाँ से बाहर चली गई, क्योंकि उसे विहा से ये उम्मीद नहीं थी। और जब उम्मीद टूटती है तो आंखों में आंसू जरूर आ ही जाते हैं। निवेदिता अपनी आंखों के कोने पोंछते हुए विहा के लिए साथ में सूप बना रही थी। माधवी, जो गौर से निवेदिता को देख रही थी, वो हॉल से उठकर निवेदिता के पास आते हुए बोली, निवेदिता सब सही तो है ना, तुम्हारी आंखों में ये आंसू? निवेदिता ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं जीजी, बस ऐसे ही। निवेदिता की आवाज में छुपा दर्द माधवी पहचान चुकी थी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर निवेदिता की लड़ाई हुई किससे है? जब पता चलेगा तभी तो वो आग को और ज्यादा भड़का पाएगी। उसने अपनी जुबान में और भी ज्यादा मिश्री घोलते हुए कहा, बताओ ना क्या हुआ है, सब बच्चे तो ठीक है ना, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ है? माधवी की आवाज में झूठी फिक्र झलक रही थी, जिसे महसूस कर निवेदिता ने जल्दी से कहा, नहीं जीजी, बच्चे ठीक हैं, बस विहा को पीरियड्स आए हैं, इस वजह से वो काफी परेशान है, रो रही है। माधवी ने पूरा माजरा समझते हुए धीरे से कहा, तो कुछ कहा उसने तुमसे? देखो, वो अभी बच्ची है, अगर उसके दिमाग में कुछ भी गलत ख्याल आ रहे हैं तो हमें उसे समझाना पड़ेगा, और मैं उसे तभी समझ पाऊंगी जब मुझे पता चलेगा कि आखिर वो सोचती क्या है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हैं। माधवी की बातों में इतना अपनापन महसूस कर निवेदिता कैसे सीखती? मैं तो उसके बाद उसका हाल पूछने गई थी। उसने कहा कि उसकी दीदी शादी के बाद बदल गई है और उसी की शादी नहीं करनी चाहिए थी, तो मैंने उससे कहा कि मेरे बेटे की शादी बड़ी उम्मीद से मैं तुम्हारे साथ की है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? और उसे बस इस बात का बुरा लग गया और वो और भी ज्यादा रोते हुए मुझसे दूर हो गई, और उसे लगता है कि मुझे सिर्फ अपने बेटों की फिक्र है, उसकी नहीं। माधवी को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी, तो वहीं निवेदिता भी अपने आंसू पोंछकर एक प्लेट में वो वाटर बैग और दूसरी तरफ सूप की कटोरी रखे वापस विहा के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं माधवी भी होठों पर डेविल स्माइल लिए अपने कमरे में चली गई, ताकि इस बारे में राधिका से सब कुछ डिस्कस कर पाए। कमरे में पहुंचते ही माधवी ने जल्दी से राधिका को मैसेज किया कि वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाए। माधवी ने फोन साइड में रखते हुए बेड पर बैठकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं तो सोच रही थी मुझे चिंगारी भड़कानी पड़ेगी, लेकिन छोटी बहू का बचपन शायद ये काम अपने आप ही कर देगा, और रूहान तो मुझे भगवान मानता है, तो मैं इन दोनों रिश्तों को ही नहीं बनने दूंगी। और वेदांत, जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है, बहुत जल्दी उसका एटीट्यूड भी मेरी जूती के नीचे होगा, और फिर वो सुनहरी चाबी मेरे हाथ लगेगी, जिसके लिए मैंने इतने सालों से इतनी इज्जत दो चाहत की है। वहीं निवेदिता ने विहा का कमरा नॉक किया, जिसे विहा ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, हाँ सासुमा, आ जाइए अंदर। उसकी टोन में आई सॉफ्टनेस को महसूस कर निवेदिता की आंखें छोटी हो गई, जैसे उसे शक हो रहा हो कि विहा इस बार इतनी प्यार से बोल रही है। थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल अंगारों की तरह दहक रही थी, पर कहीं न कहीं अंदाजा था निवेदिता को कि विहा को मूड स्विंग्स हो रही हैं, जो होना बहुत आम बात है। निवेदिता हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके करीब गई और फिर वो वाटर बैग और सूप बेड पर रखते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, इसे पी लो, तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा महसूस होगा। और हाँ, एक और बात, मैं वेदांत को इस बारे में समझा दूंगी कि ऐसे सिचुएशन में वो तुम्हें अकेला ना छोड़कर जाए, और तुम भी थोड़ा ओवरथिंकिंग करना बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, अच्छे खासे रिश्तों के बीच ये गलतफहमी खड़ी कर देती है। विहा ने फिर से बच्चों की तरह रोते हुए निवेदिता की कमर से लिपट कर कहा, सासू माँ, मुझे दर्द हो रहा है और पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बक जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो वेदांत जी से शादी करने के लिए मर रही थी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारी शादी टूट जाए, या फिर ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, वो बस ऐसे ही गुस्से में निकल गया। आप दीदी से भी पूछ सकती हो, मैंने ना मैथमेटिक्स में इसीलिए ली थी ताकि मैं आपकी कंपनी में जॉब करके वेदांत जी को पटा लूं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ रहा है वो पढ़ने वाले इंसान नहीं है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। विहा की इस बात को सुनकर निवेदिता को बहुत जोरों की हंसी आई, उसका बेटा फटने वाला नहीं है कि उसे तो पता ही नहीं था, फिर भी उसने प्यार से विहा के बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मान रही हूँ, मुझे पता है तुम कैसी हो। विहा ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, प्लीज आप मत जाइए, आप यही मेरे पास रहिए जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते हैं। निवेदिता उसके पास बैठते हुए बोली, हाँ बच्चा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास रहूंगी, अब खुश? विहा ने मुस्कुराते हुए हमें सर हिला दिया और फिर खुशी से वो सूप पी पीने लगी। दोपहर के करीब 1 बजे निमानी हाउस के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिससे अनाही उतरकर तेज कदमों से घर के अंदर आती है। वो ड्राइवर वेदांत ने भेजा था अनाही के साथ ताकि उसे घर तक जाने के लिए टैक्सी न लेनी पड़े। उसे याद थी रूहान की बातें। अनाही अपने कमरे में आते ही सबसे पहले फ्रेश हुई और एक लाइट ग्रीन कलर की नेट की प्लेन साड़ी और उसके साथ व्हाइट कलर का ब्लाउज पहनकर बाथरूम से बाहर निकली। बाहर निकालने के बाद उसने जल्दी से अपने बालों को क्लच किया और फिर तेजी से वापस से नीचे चली गई। राधिका, जो किचन में अपने लिए स्नैक्स लेने आई थी, उसने जैसे ही अनाही को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने अनाही के किचन के अंदर आते ही पूछा, बहुरानी, आज तुम जल्दी वापस आ गई, कुछ हुआ क्या ऑफिस में? राधिका उम्मीद कर रही थी कि अनाही और वेदांत के बीच भी लड़ाई हो जाए ताकि उन लोगों को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, लेकिन अनाही ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चाचा जी, हमारे बीच क्या लड़ाई होगी, वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी एम्प्लॉय, ऑफिस में इतना ही हमारा रिश्ता है, वो मुझे ऑर्डर देते हैं और मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, लड़ाई का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। एक्चुअली आज विहा की तबीयत खराब है ना, सुबह तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, आधे रास्ते में जाने के बाद मुझे याद आया तो मैंने सोचा हाफ डे ले लेती हूँ, बस इसीलिए वापस आ गई। इतना बोलकर अनाही अपने लिए और विहा के लिए कोल्ड कॉफी बनाने लगी। राधिका वहाँ से मुंह पिचकते हुए वापस चली गई और अनाही भी अपने हाथों में 2 कोल्ड कॉफी के गिलास लिए विहा के कमरे तक पहुँची। कमरे के बाहर जाकर उसने एक गहरी सांस ली और ऊपर की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, कान्हा जी, प्लीज उसका गुस्सा थोड़ा सा कम कर देना, बस थोड़ा सा, मुझे पता है बम की तरह फटने वाली है मेरे ऊपर, मैं कैसे भूल सकती हूँ उसे और उसकी प्रॉब्लम को। शहर के बाहरी इलाके में एक साइकेट्रिस्ट का प्राइवेट केबिन था, जिसके बाद रूहान की गाड़ी आकर रुकी। रूहान के साथ इस वक्त सिर्फ मोहिनी थी, वो लोग जलाल को अखिल के पास ड्रॉप करके आ चुके थे।
रूहान और मोहिनी दोनों तेज कदमों से चलकर उसके केबिन के अंदर जाते हैं। वहाँ चेयर पर तकरीबन 45 के उम्र के आसपास की औरत आंखों पर चश्मा चढ़ाए बैठी थी। वो अपने हाथों में पड़ी फाइल को पढ़ रही थी। उसने इस वक्त एक ब्लू कलर की सिल्क कॉटन वाली साड़ी पहनी थी। उसके बाल चैली के से सेट थे और वो इतनी ध्यानमग्न थी कि उसे मोहिनी और रूहान के आने का अंदाज़ा तक नहीं हुआ। रूहान ने वहां जाकर चेयर पर दम से बैठते हुए कहा, गुड आफ्टरनून डॉक्टर अनी आंटी। उसे देखकर वो औरत अपनी आंखों पर चढ़ी चश्मे को ठीक करते हुए बोली, तुम लेट क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।